नमस्कार। आज हम भारत में स्थानीय विकास की योजना यानी मतलब जमीनी स्तर पर डेवलपमेंट प्लानिंग कैसे होती है उसकी तैयारी के पीछे की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर हम ग्राम पंचायत विकास योजना जिसे GPDP कहते हैं उसके बहुत ही अहम मतलब जो तैयारी वाला चरण है उस पर ध्यान देंगे। हमारे पास इसके लिए एक प्रैक्टिशनर हैंडबुक है जो बताती है कि जमीन पर GPDP लागू करते समय जो असली मुश्किलें आती हैं उनसे कैसे निपटा जाए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सारी तैयारी इतनी जरूरी क्यों है, मतलब सिर्फ योजना बनाने से पहले इतनी माथापच्ची क्यों? ये हैंडबुक किन असली चुनौतियों को सुलझाने की बात कर रही है? क्या ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई है या इसका कोई गहरा मतलब है?
आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिये, इस पूरी कवायद की जड़ें हमें मिलती हैं 73वें संविधानिक संशोधन में। इसी संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं मतलब PRIs को अपने स्तर पर विकास के लिए करीब 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया था। तो GPDP का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ये पंचायतें सिर्फ ऊपर से आए आदेशों पर न चलें, बल्कि लोगों की मतलब आम जनता की वास्तविक जरूरतों और उम्मीदों के आधार पर अपनी योजनाएं बनाएं। और इसमें भी खास तौर पर गरीब और जो हाशिए पर मौजूद समुदाय हैं उनकी आवाज सुनना बहुत जरूरी है। ये जो तैयारी का चरण है ये इसी नींव को मजबूत करने के लिए है ताकि योजना सिर्फ बने नहीं बल्कि सफल भी हो।
ठीक है, तो मतलब ये तैयारी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक तरह से मजबूत नींव रखने जैसा है। चलिए फिर इस तैयारी के चरण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर इसमें होता क्या क्या है? अगर हम हैंडबुक के नजरिए से देखें तो GPDP का असली मकसद क्या है? मतलब हम जानते हैं कि ये 73वें संशोधन और उन 29 विषयों से जुड़ा है, लेकिन ये जमीनी हकीकत यानी मांग आधारित योजना और सबकी भागीदारी, खासकर हाशिए पर खड़े लोगों की, इसे कैसे सुनिश्चित करता है? ये तैयारी कैसे मदद करती है?
देखिए, GPDP का जो विचार है वो तो बहुत अच्छा है, पर जमीनी हकीकत कई बार थोड़ी अलग होती है और इसीलिए इसकी आलोचना भी होती है। हैंडबुक जिन मुख्य समस्याओं को पहचानती है वो काफी गंभीर है। पहली और शायद सबसे बड़ी वो है समुदाय की सक्रिय भागीदारी की कमी। कहने को तो ये सबकी योजना है पर असल में हाशिए पर रहने वाले समूह, महिलाएं, बच्चे, इनकी आवाज अक्सर ठीक से शामिल नहीं हो पाती। दोनों पर असर पड़ता है।
अच्छा,
और शायद सबसे बड़ी चिंता ये है कि जमीन पर योजनाओं का उम्मीद से बहुत कम लागू हो पाना, मतलब कई बार अच्छी अच्छी योजनाएं भी फाइलों में ही सिमट कर रह जाती हैं।
हाँ।
तो ये जो पूरी तैयारी की प्रक्रिया हैंडबुक में बताई गई है वो इन्हीं चुनौतियों से आप कह सकते सीधे सीधे निपटने का एक प्रयास है। और हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है, अब GPDP को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ा गया है, मतलब लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स LSDGs।
अच्छा, LSDGs।
हाँ, ये वही वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें हमें 2030 तक पाना है, लेकिन अब उन्हें गांव के स्तर पर लागू करने की बात है। इसे लक्षित GPDP या टारगेटेड GPDP कहा जा रहा है। और योजनाओं की प्रगति को नापने के लिए पंचायत विकास सूचकांक यानी PDI और पंचायत उन्नति सूचकांक यानी PAI जैसे तरीके भी लाए गए हैं।
PDI और PAI, ठीक है।
अति स्वयं सहायता समूह मतलब SHGs जैसे जो समुदाय आधारित संगठन है CBOs, उनकी भूमिका को भी अब और अहम माना जा रहा है।
तो मतलब ये तैयारी सिर्फ योजना बनाने का पहला कदम नहीं है, ये एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जिससे योजना न सिर्फ सही बने बल्कि लागू भी हो और उसमें वो सतत विकास वाले लक्ष्य भी शामिल हों। तो फिर इस ढांचे को खड़ा करने के लिए सबसे पहले किन लोगों या टीमों की जरूरत पड़ती है? हैंडबुक क्या कहती है इस बारे में?
बिल्कुल, हैंडबुक के मुताबिक सबसे पहला काम है सही संरचनाएं और जिम्मेदारियां तय करना। ये कई स्तरों पर होता है। हर प्रशासनिक इकाई पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
हर स्तर पर मतलब राज्य, जिला?
हाँ हाँ, राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक होते हैं, जिला स्तर पर DDC कम CEO जिला परिषद के, ब्लॉक स्तर पर BDO कम सेक्रेटरी पंचायत समिति के, और सबसे महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव।
ठीक है।
इन सभी अधिकारियों का काम सिर्फ आदेश देना नहीं है, इनका काम है समन्वय करना, निगरानी रखना, अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बिठाना, आगे हम जिस GPPFT टीम की बात करेंगे उसे मदद देना और पूरी प्रक्रिया की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना, ये सब इनकी जिम्मेदारियां हैं।
और समन्वय समितियां उनका क्या रोल है?
हाँ, वो भी बनती हैं। जिला स्तर पर उपायुक्त यानी डीसी की अध्यक्षता में एक समिति होती है, जिसमें जिले के लगभग सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी और सिविल सोसाइटी संगठनों मतलब CSOs के प्रतिनिधि होते हैं। इसी तरह ब्लॉक स्तर पर BDO की अध्यक्षता में समिति बनती है। इनका मुख्य काम ये देखना है कि अलग अलग विभाग मिलकर काम करें, क्योंकि गांव का विकास किसी एक विभाग का काम तो है नहीं।
सही बात है, ये तो हुई प्रशासनिक और समन्वय की बात, लेकिन हैंडबुक कुछ खास संसाधन टीमों का भी जिक्र करती है। SRT, DRT और BRT, राज्य, जिला और ब्लॉक संसाधन दल, ये नोडल अधिकारियों और समन्वय समितियों से कैसे अलग हैं? इनका क्या खास काम है?
हाँ, ये टीमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सीधे तौर पर योजना बनाने की प्रक्रिया में मदद करती हैं, मतलब एक तरह से तकनीकी और प्रक्रियात्मक सहायता देती हैं। राज्य संसाधन दल यानी SRT सबसे ऊपर होता है। इसमें अनुभवी प्रशिक्षक, विभागों के जानकार और CSOs के विशेषज्ञ होते हैं। इनका मुख्य काम है जिला और ब्लॉक संसाधन दलों यानी DRT और BRT को ट्रेनिंग देना, उनका मार्गदर्शन करना, और मान लीजिए किसी एक जिले में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके अनुभवों को दूसरे जिलों तक पहुंचाना, लर्निंग शेयरिंग।
अच्छा, तो ये ट्रेनर्स के ट्रेनर जैसे हो गए?
कुछ हद तक हाँ। और वहीं DRT और BRT जमीन पर काम करते हैं। इनमें जिला और ब्लॉक स्तर के समन्वयक, आजीविका विशेषज्ञ, मनरेगा या स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के प्रतिनिधि, CSOs के प्रशिक्षक और कभी कभी अनुभवी मुखिया जैसे लोग भी शामिल होते हैं। इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई LSDGs को ध्यान में रखकर GPDP बनाने में कैसे मदद करें, कैसे भागीदारी वाली प्रक्रियाएं अपनाएं, कैसे विषय आधारित योजनाएं बनाएं। ये टीमें पंचायतों को योजना बनाने के कैसे वाले हिस्से में मदद करती हैं।
समझ गया, तो नोडल अधिकारी प्रशासनिक समन्वय देखते हैं, समन्वय समितियां विभागों के बीच पुल बनाती हैं, और ये संसाधन दल तकनीकी और प्रक्रियात्मक मदद देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और टीम का जिक्र बार बार आता है, GPPFT, ग्राम पंचायत योजना और सुविधा दल। हैंडबुक कहती है कि इसका गठन बहुत सोच समझ कर होना चाहिए, ऐसा क्यों, ये इतनी खास क्यों है?
GPPFT मतलब ग्राम पंचायत प्लानिंग एंड फैसिलिटेशन टीम, आप इसको इस पूरी प्रक्रिया का जमीनी इंजन कह सकते हैं। यही वो टीम है जो असल में गांव में जाकर लोगों के साथ बैठती है, उनकी जरूरतों को समझती है और योजना बनाने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाती है, उसे फैसिलिटेट करती है।
जमीनी इंजन, ठीक है।
हैंडबुक इस पर बहुत जोर देती है कि GPPFT का गठन सिर्फ पंचायत के चुने हुए सदस्यों या जो कार्यकारी समिति होती है बस उन्हीं के भरोसे ना छोड़ा जाए, इसे वास्तव में समावेशी इंक्लूसिव होना चाहिए। इसके लिए हैंडबुक में झारखंड के लोहरदगा जिले की उग्रा ग्राम पंचायत का एक उदाहरण भी दिया गया है।
अच्छा, उग्रा पंचायत का क्या तरीके से जाएंगे?
हाँ, कुछ अच्छे तरीके। पहला, पंचायत में पहले से जो मंच मौजूद हैं जैसे ग्राम पंचायत समन्वय समिति GPCC, उनका इस्तेमाल करें। दूसरा, सभी संबंधित लोगों को बुलाएं, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे ANM, आशा बहनें, स्कूलों के प्रतिनिधि, अलग अलग विभागों के जमीनी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी,
मतलब सबको शामिल करना है।
बिल्कुल। तीसरा, सदस्यों का चुनाव हवा में ना हो बल्कि स्पष्ट क्राइटेरिया पर हो, जैसे समुदाय के साथ काम करने का अनुभव हो, स्थानीय विकास में सचमुच रुचि हो, थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी हो, और सबसे जरूरी, इस काम के लिए समय देने को तैयार हो।
उपलब्धता भी जरूरी है।
हाँ, बिल्कुल। चौथा, चुने गए सदस्यों को उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां साफ साफ बताई जाए, कोई कंफ्यूजन न रहे। और पांचवा, GPPFT की संरचना और उनकी भूमिकाओं के बारे में गांव में सबको बताया जाए, पब्लिक डिस्प्ले हो, ताकि पारदर्शिता रहे और लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारी अपनी टीम है, हमारा भी इसमें कुछ रोल है।
ठीक है, तो ये GPPFT बनती कैसे, मतलब कौन कौन लोग होते हैं इसमें आमतौर पे?
आमतौर पर एक GPPFT में एक पंचायत कर्मचारी होता है, जैसे इस पंचायत सचिव या रोजगार सेवक जो समन्वयक का काम करता है। साथ में एक VPRP फैसिलिटेटर होता है, VPRP यानी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। पंचायत की जो स्थायी समितियां होती हैं उनके सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना जरूरी है, और जिस विषय पर योजना बन रही है उससे जुड़े जमीनी कार्यकर्ता या किसी स्थानीय CSO या CBO के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इससे टीम में आप देखें तो प्रशासनिक समझ भी आ जाती है, सामुदायिक जुड़ाव भी और विषय की जानकारी भी, तीनों का एक अच्छा संतुलन बनता है।
ये तो काफी सोच समझकर बनाएगी संरचना लगती है। तो ये टीम बन गई जिसमें अलग अलग तरह के लोग शामिल हैं। अब जमीन पर इन्हें करना क्या होता है, इनके मुख्य काम क्या है?
इनके काम सीधे तौर पर योजना निर्माण से जुड़े हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, महिला सभा और बाल सभा करवाना।
अच्छा, ये अलग से?
हाँ, अलग से। ये इसलिए जरूरी है ताकि महिलाओं और बच्चों की जो खास जरूरतें और विचार हैं वो योजना का हिस्सा बन सकें। अक्सर सामान्य ग्राम सभाओं में ये बातें पीछे रह जाती हैं।
सही बात है।
चलती है जिसमें गांव के लोग मिलकर अपनी जरूरतें बताते हैं, समाधान सुझाते हैं। तीसरा, इस तरह जो योजना का मसौदा तैयार होता है उसे ग्राम सभा के सामने रखना, उस पर चर्चा करवाना और फिर प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देना और आखिर में सभी गांवों और वार्डों से आई योजनाओं को मिलाकर एक फाइनल ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP तैयार करना और उसे औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत को सौंप देना। तो आप देख सकते हैं कि GPPFT वास्तव में पूरी नियोजन प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है।
बिल्कुल। तो ये संरचनाएं बन गईं, टीमें नियुक्त हो गईं, GPFT का गठन हो गया और उनके काम भी तय हो गए। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ ढांचा बना देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? ये तैयारी प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित करती है कि इन सभी लोगों को, नोडल अधिकारी से लेकर GPFT सदस्य तक, पता हो कि उन्हें क्या करना है, उनके पास जरूरी स्किल्स हों और जो योजना बने उस पर अमल भी हो? मतलब क्षमता निर्माण और जवाबदेही, कैपेसिटी बिल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी, इसका पहलू कैसे संभाला जाता है?
ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि बिना क्षमता और जवाबदेही के अच्छे से अच्छा ढांचा भी विफल हो सकता है। हैंडबुक इसके लिए कई जुड़े हुए कदम सुझाती है। पहला है जमीनी हकीकत का आकलन, मतलब शुरू करने से पहले कुछ चुनिंदा पंचायतों में फोकस ग्रुप डिस्कशन FGDs किए जाते हैं।
FGDs?
हाँ, फोकस ग्रुप डिस्कशन। इससे पता चलता है कि लोग GPDP के बारे में कितना जानते हैं, योजनाओं की क्या स्थिति है, समुदाय की भागीदारी कैसी है, खासकर स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs की महिलाओं की, कार्यान्वयन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। इस जानकारी के आधार पर ही आगे की ट्रेनिंग और पूरी रणनीति तय होती है, मतलब नीड बेस्ड ट्रेनिंग डिजाइन होती है।
ठीक है, पहले समझना कि प्रॉब्लम कहाँ है।
बिल्कुल। फिर दूसरा कदम है कार्यशालाएं और प्रशिक्षण। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सभी संबंधित लोगों के लिए वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं। इनमें GPDP प्रक्रिया के हर कदम को विस्तार से समझाया जाता है, सबकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बिल्कुल स्पष्ट की जाती हैं, प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, अलग अलग विभाग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, जिसे अभिसरण या कन्वर्जेंस कहते हैं, उसकी रणनीतियां बताई जाती हैं, निगरानी कैसे होगी इस पर भी बात होती है।
कन्वर्जेंस बहुत जरूरी है।
बहुत ज्यादा। तीसरा है नियमित समीक्षा और निगरानी। सिर्फ योजना बनाकर छोड़ देना काफी नहीं है। हैंडबुक कहती है कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक रेगुलर बेसिस पर समीक्षा बैठकें होनी चाहिए। इसके लिए एक संस्थागत व्यवस्था, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने पर जोर है। इससे जवाबदेही तय होती है और अगर कहीं कोई कमी या देरी हो रही है तो समय रहते उसे ठीक किया जा सकता है।
ठीक है, रेगुलर फॉलोअप।
हाँ। चौथा है आपसी सीख यानी पीयर लर्निंग। एक बहुत अच्छा तरीका है क्लस्टर स्तरीय GPDP समीक्षा बैठकें आयोजित करना। इसमें आसपास की पंचायतें, मान लीजिए 5-7 पंचायतें, एक साथ आती हैं, अपने अनुभव साझा करती हैं, एक दूसरे की सफलताओं से सीखती हैं और मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढती हैं।
ये बढ़िया है, एक दूसरे से सीखना।
बिल्कुल। पांचवा है स्थानीय समितियों का सशक्तिकरण। जैसे हमने ग्राम पंचायत समन्वय समिति GPCC की बात की थी, या ऐसी ही कोई स्थानीय समिति हो उसकी भूमिका को औपचारिक रूप से परिभाषित करने और उसे मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इन्हें GPDP योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इससे स्थानीय स्तर पर ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ती हैं। और छठा, विषय आधारित फोकस। जैसा हमने पहले बात की थी कि अब GPDP LSDG विषयों पर केंद्रित है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए इन अलग अलग विषयों पर जानकारी देने के लिए सत्र, मतलब ओरिएंटेशन सेशन आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद हर पंचायत अपनी जीपीसीसी जैसी समिति में चर्चा करके जीपीडीपी प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने लिए एक मुख्य विषय चुनती है। इसके लिए हैंडबुक में झारखंड राज्य के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया गया है।
अच्छा, तो विषय का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस तैयारी का।
हाँ, ताकि फोकस बना रहे।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक सफल जीपीडीपी के लिए ये पूरी तैयारी, जिसमें सही लोग चुनना, स्पष्ट भूमिकाएं तय करना, समितियां बनाना, लगातार ट्रेनिंग देना, निगरानी रखना और सबको साथ लेके चलना शामिल है, ये बुनियादी तौर पर बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मतलब किसी तरह एक योजना बना लेने की कवायद नहीं है, बल्कि एक ऐसी योजना बनाने की कोशिश है जो जमीनी हकीकत से जुड़ी हो, जिसमें सबकी आवाज शामिल हो और जो लागू भी हो सके।
बिल्कुल। और अंतिम विचार के तौर पर मैं यही कहूंगी कि हैंडबुक का समन्वय समितियों पर, संसाधन दलों पर और खास तौर पर सही ढंग से गठित और प्रशिक्षित जीपीपीएफटी पर इतना जोर देना, ये दिखाता है कि अब विकेंद्रीकृत नियोजन को, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को ज्यादा गंभीरता से ज्यादा सहयोग और तकनीकी मदद के साथ करने की कोशिश हो रही है। ये साफ तौर पर उन पुरानी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, यानी भागीदारी की कमी और योजनाओं का जमीन पर न उतर पाना। ये कहीं न कहीं कागज और कार्रवाई के बीच के फासले को कम करने की एक ईमानदार कोशिश लगती है।
सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे वो सोच सकते हैं। हमने देखा कि ये तैयारी प्रक्रिया कितनी विस्तृत और जटिल है। नोडल अधिकारी, समितियां, संसाधन दल, जीपीपीएफटी, फिर ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और बहुत कुछ। लेकिन इन सभी औपचारिक संरचनाओं और दिशा निर्देशों के बावजूद जमीन पर अलग अलग किरदारों, सरकारी अधिकारियों, चुने हुए प्रतिनिधियों, सीएसओज और समुदाय के लोगों को एक साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करने में सबसे बड़ी अनकही या छिपी हुई चुनौती क्या हो सकती है? वो कौन सी असली बाधा है जो शायद इन हैंडबुक्स में लिखी नहीं मिलती, पर जिससे जमीन पर रोज जूझना पड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।